आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ आज, उपराष्ट्रपति सहित अन्य विशिष्ट जन भी होंगे शामिल। शिक्षा नीति पर केंद्रित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आज से नई दिल्ली में। मध्यप्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान, तैयारियां पूरी। और महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप में आज भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज उज्जैन में आयोजित हो रहे 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस आयोजन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। समारोह का शुभारंभ शाम 4 बजे होगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इस क्रम में 13 नवंबर को 10 बजे महाकवि कालिदास के साहित्य में पंच महाभूत विमर्श पर आधारित राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का प्रथम सत्र, दोपहर 2 बजे विक्रम विश्वविद्यालय के अंतर्गत राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी और शाम 5 बजे पंडित सूर्यनारायण व्यास व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद शाम 7 बजे शास्त्र धर्मी शैली पर आधारित तथा पारंपरिक शैली से अनुप्रेरित नृत्य नाटिका का प्रस्तुतिकरण होगा। 14 नवंबर को शोध संगोष्ठी का द्वितीय सत्र व्याख्यानमाला कुटुंब व्यवस्था और हिंदी नाटक वसंत सेना का प्रस्तुतिकरण होगा। इसी तरह 15 नवंबर को संगोष्ठी का तृतीय सत्र व्याख्यानमाला कालिदास का पर्यावरण चिंतन, लोक गायन और नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रस्तुति होगी। 16 नवंबर को संस्कृत कवि समवाय, अंतर विश्वविद्यालयीन संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगिता और लोक नृत्य की प्रस्तुति होगी। 17 नवंबर को अंतर महाविद्यालयीन कालिदास काव्य पाठ, अंतर महाविद्यालयीन हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता और शास्त्रीय गायन होगा। 18 नवंबर को समापन समारोह होगा। समारोह के दौरान वर्ष 2022-23 के लिए कालिदास अलंकरण सम्मान से विभूतियों को सम्मानित भी किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों के साथ उच्च और तकनीकी शिक्षा पर केंद्रित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों और पद्धतियों का प्रसार, रूपरेखा और कार्यान्वयन रणनीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना है। ये कार्यशाला ज्ञान को बढ़ावा देने और शिक्षा नीति के प्रभावी तथा सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों को एक साझा मंच प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित करती है। इससे देश में मजबूत, समावेशी और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली का मार्ग भी प्रशस्त होगा। त्योहारों के अवसर पर भारतीय रेलवे द्वारा लगभग 7,700 विशेष गाड़ियां चलाई गई हैं, जबकि पिछले साल 4,500 विशेष गाड़ियां चलाई गई थीं। भारतीय रेल ने इस वर्ष पिछले साल की तुलना में 70% अधिक विशेष गाड़ियों का संचालन किया है, जिनमें फेस्टिवल सीजन के दौरान 20 करोड़ से अधिक यात्रियों को लाभ मिला है। बताया गया है कि 4 नवंबर 2024 को 3 करोड़ से अधिक यात्रियों ने भारतीय रेल से यात्रा की। ये संख्या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की कुल आबादी से भी अधिक है। भारतीय रेलवे द्वारा प्रमुख स्टेशनों पर की गई व्यापक व्यवस्था और विशेष गाड़ियों के परिचालन से ये उपलब्धि हासिल करने में मदद मिली है। इसी तरह पश्चिम मध्य रेलवे ने भी त्योहारी सीजन में 8 स्पेशल ट्रेनों से 50 ट्रिप चलाकर 100 सेवाएं उपलब्ध कराई। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष प्रबंध किए, जिसमें कतारबद्ध तरीके से यात्रियों को ट्रेन में प्रवेश की व्यवस्था देखने, भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त कर्मचारी और रेल सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए। महिला बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया कल किशोर न्याय बोर्ड और बाल संरक्षण समिति के नवनियुक्त सदस्यों के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बाल कल्याण समिति या किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों को कई अधिकार प्राप्त हुआ करते हैं। बच्चों के सर्वोत्तम हित में न्यायोचित निर्णय लें, ये सभी से अपेक्षित है। मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा कि बालकों की देखरेख एवं संरक्षण संबंधी किशोर न्याय अधिनियम 2015 एक व्यापक कानून है, जो किशोरों की समृद्धि और विकास के लिए न्याय और अवसरों की व्यवस्था करता है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिन प्रदेश के 17 जिलों में नवनियुक्त बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा जिला बाल संरक्षण इकाई के 54 नवनियुक्त कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। पश्चिम नेमाड़ के खरगोन जिले के ऐतिहासिक एवं गौरवशाली प्रसिद्ध पर्यटन स्थल महेश्वर में लोकमाता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर कार्तिक पूर्णिमा से निमाड़ उत्सव का आयोजन होगा। ये 15 नवंबर से 17 नवंबर 2024 तक आयोजित होगा। इस 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव में प्रतिदिन शाम 7 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे से नर्मदा रिसोर्ट सभागार में संगोष्ठियों का आयोजन होगा। निमाड़ उत्सव का शुभारंभ 15 नवंबर को उज्जैन के दिनेश शर्मा और सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक सुदेश भोसले द्वारा मां नर्मदा की सांगीतिक आरती के साथ होगा। इस दौरान शाम को सुगम संगीत की प्रस्तुति मुंबई के सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक और उनके साथियों द्वारा दी जाएगी। इसी क्रम में 16 नवंबर को शाम 7 बजे निमाणी गायन अंतर्गत लोककंठ की प्रस्तुति मनीषा शास्त्री, राखी बांके, सोनाली ढाकसे, विकास शुक्ला और साथी कलाकारों द्वारा दी जाएगी। इस दौरान गणगौर, कर्मा, छाऊ, भांगड़ा और मलवाई गिद्दा सहित नृत्य की विविध प्रस्तुतियों का प्रदर्शन कलाकारों द्वारा किया जाएगा। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। सीहोर जिले के बुधनी और श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी किशोर कुमार कन्याल ने बताया कि विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 327 मतदान केंद्र हैं। इन मतदान केंद्रों पर 13 नवम्बर को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया सम्पन्न होगी। उन्होंने बताया कि विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,54,714 मतदाता है, जिनमें से 1,33,581 पुरुष और 1,21,131 महिला वोटर हैं। थर्ड जेंडर वोट की संख्या 2 है। इसके अलावा 103 सर्विस वोटर भी इस विधानसभा क्षेत्र में हैं। इस संबंध में कलेक्टर ने बताया कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण उपचुनाव के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं।
हमने 164 इस बार क्रिटिकल बूथ बनाए हैं, तो मतलब 131 से बढ़ के 164 हो गए। और पहले 5 अंतर जिला नाके चल रहे थे, अब हमने 6 और अंतर जिला नाका चालू किए हैं और 11 हमने अंतर जिला नाका लगा दिए। जो अपने करौली जिले से 6 नाव घाट भी हैं, जिसमें कुछ में 2 में तो स्टीमर भी चलते हैं, जिसमें 4-व्हीलर तक रख लेते हैं, उन पे भी बल लगा हुआ है। और आसपास के सभी जिलों के SP साहब से लगातार कोऑर्डिनेशन है, उनके यहां से भी लगातार चेकिंग होगी। तो बाहर से कोई भी व्यक्ति जो है वो अवांछित तत्व तो नहीं घुस पाएगा, इसका पूरा हमने व्यवस्था की हुई है।
वन विभाग ने राज्य सरकार की सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। नर्मदापुरम जिले के मढ़ई स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पर्यटकों के लिए सोलर बोट का संचालन शुरू किया गया है। प्रदेश की यह पहली बोट होगी जो सौर ऊर्जा से संचालित होगी। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी और क्षेत्र संचालक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व श्रीमती राखी नंदन ने 10 नवंबर को सोलर बोट का उद्घाटन किया। और बात खेलों की करते हैं। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में कल भारत ने अपने पहले मैच में मलेशिया को 4-0 से हरा दिया। मलेशियाई टीम भारत की रक्षा पंक्ति को भेद नहीं पाई और वहीं कई पेनल्टी कॉर्नर खोने के बावजूद भारतीय टीम 3 गोल दागने में कामयाब हुई। इससे पहले उद्घाटन मैच में जापान और दक्षिण कोरिया के बीच रोमांचक मुकाबला 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुआ। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर 12 नवंबर को नई दिल्ली में इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि द्वारका में विद्युत मंत्रियों और विद्युत सचिवों के सम्मेलन में शामिल होंगे। लॉ कॉलेज अशोकनगर में आज से भूकंपरोधी संरचना निर्माण पर आधारित सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के साथ 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। और शाजापुर शहर के सोमवारिया बाजार में गत दिवस कंस दशमी पर कंस वध कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शहर में 271 वर्षों से यह अनूठी परंपरा चली आ रही है। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।